नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारी बहुमत के साथ निर्णायक जीत की ओर, आधिकारिक परिणाम अभी घोषित नहीं। अमेरिका ने सीरिया के अल तनफ सैन्य अड्डे से अपनी सेना वापस बुलाई। यूनिसेफ ने कहा, हैती में बढ़ती गरीबी और हिंसा के बीच पिछले साल सशस्त्र समूहों में बच्चों की भर्ती 3 गुना अधिक हुई। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है और आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। अनौपचारिक मतगणना और पार्टी के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी 13वें राष्ट्रीय चुनाव में व्यापक जीत की ओर बढ़ रही है और सुबह 9:30 बजे तक 181 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। एक रिपोर्ट।
बीएनपी ने भरोसा जताया कि उसे 2/3 बहुमत मिलेगा। पार्टी ने इस नतीजे को जनता का भारी समर्थन बताया। तारिक रहमान और मिर्जा फखरुल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी सीट जीत ली है। बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी NCP ने कहा कि उसे 6 सीटें मिली है। चुनाव आयोग ने अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं किए है और 3 सीटों के परिणाम अदालत में मामले लंबित होने के कारण रोक दिए है। मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जमात और NCP ने ढाका के कुछ इलाकों में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया। संसदीय चुनाव के साथ साथ प्रस्तावित जुलाई चार्टर सुधारों पर जनमत संग्रहण की मतगणना भी जारी है। आधिकारिक पुष्टि होने तक BNP ने अपने समर्थकों से विजयी रैली की बजाय प्रार्थना करने की अपील की है। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में BNP को निर्णायक जीत दिलाने के लिए तारिक रहमान को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत बांग्लादेश की जनता का आपके नेतृत्व पर विश्वास दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। ढाका स्थित अमरीकी दूतावास ने बांग्लादेश की जनता को सफल चुनाव के लिए बधाई दी है और बांग्लादेशी राष्ट्रीय पार्टी और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने कल सीरिया में स्थित रणनीतिक सैन्य अड्डे अल तनफ गैरिसन से अपनी वापसी पूरी कर ली और इसे सीरियाई सेना को सौंप दिया। वर्ष 2014 में सीरिया के गृह युद्ध के दौरान स्थापित यह अड्डा सीरिया, जॉर्डन और इराक की त्रिपक्षीय सीमा पर स्थित है। शुरुआत में अमेरिका ने इस सैन्य अड्डे को इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ गठबंधन के अभियानों के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि वर्ष 2019 में इस्लामिक स्टेट की हार के बाद भी दमिश्क को तेहरान से जोड़ने वाली अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण ये सैन्य अड्डा ईरानी प्रभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अमरीकी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर 2009 के उस वैज्ञानिक निष्कर्ष को रद्द कर दिया है जिसे एंडेंजरमेंट फाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। ये निष्कर्ष करीब 2 दशकों से अमरीका में ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने का मुख्य कानूनी आधार था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को अमरीका के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी विनियमन विरोधी कार्रवाई बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निरस्तीकरण से वाहनों के लिए सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानक समाप्त हो जाएंगे और बिजली संयंत्रों तथा तेल और गैस सुविधाओं जैसे स्थिर स्रोतों पर जलवायु नियमों का व्यापक उल्लंघन हो सकता है। पर्यावरण समूहों ने इस कदम को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संघीय प्राधिकरण पर अमरीका के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया। अमरीका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए क्वाड समर्थित पहल के तहत पहले पुरस्कारों की घोषणा की है। एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर या AI एंगेज नामक ये कार्यक्रम 6 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देगा। इस प्रयास में NSF $24 लाख का निवेश कर रहा है। इसमें NSF, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया है। श्री ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और जिन देशों के साथ उसके व्यापार समझौते हैं वहां कोयले का व्यापक निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका एक विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका ने भारत, जापान, कोरिया और अन्य देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप ने चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में कोयले का निर्यात कर रहा है और उसके कोयले की गुणवत्ता दुनिया में सर्वोत्तम मानी जाती है। कृषि क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरुण रास्ते ने बताया कि छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए गेहूं, चावल, दुग्ध और मुर्गी पालन जैसी कृषि वस्तुओं को समझौते से बाहर रखा गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में बताया है कि हैती गणराज्य में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती में पिछले साल 3 गुना की वृद्धि हुई है। इससे अशांत कैरेबियाई देश में गरीबी और हिंसा बढ़ती जा रही है। ये वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब संगठित गिरोह हिंसा के कारण हैती में रिकॉर्ड 14 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से आधे से अधिक बच्चे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बच्चे असुरक्षित और असहाय स्थिति में हैं। हैती में यूनिसेफ की प्रतिनिधि गीता नारायण ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सशस्त्र समूहों के 30-50% सदस्य बच्चे हैं, जिनमें से कुछ की भर्ती 9 साल की उम्र के बच्चों की भी की गई है। उन्होंने इस स्थिति को भयावह बताया। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी ने पूर्व रक्षा प्रवक्ता एंगस टेलर को अपना नया नेता चुन लिया है। पार्टी ने सुसान ले को हटाते हुए यह फैसला किया। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय लिबरल पार्टी की चुनावी हार के महज 9 महीने बाद और जनमत सर्वेक्षणों में लगातार गिरावट के बीच लिया गया है। कैनबरा में लिबरल पार्टी के सांसदों ने 34 के मुकाबले 17 मतों से एंगस टेलर को अपना नया नेता चुना। लिबरल पार्टी मध्य दक्षिण पंथी गठबंधन की वरिष्ठ सहयोगी है, जिससे उसका नेता ही विपक्ष का नेता होता है। पिछले मई में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद से मध्य दक्षिण पंथी विपक्ष आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। गठबंधन दो बार टूटा और फिर से बना और उसका जन समर्थन घटकर विद्रोही धुर दक्षिणपंथी वन नेशन पार्टी से भी नीचे गिर गया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। इस अवसर पर प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिवस रेडियो से जुड़े लोगों के प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दूर दराज के गांवों से लेकर व्यस्त शहरों तक लोगों को एक विश्वसनीय आवाज के रूप में सेवाएं देता है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। भारत की T20 विश्व कप में रनों के अंतर से ये सबसे बड़ी जीत है। प्रतियोगिता में आज सुबह 11 बजे कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने संसदीय चुनावों में भारी बहुमत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी जीत पर उन्हें बधाई दी है। अमेरिका ने सीरिया के अलतनफ सैन्य अड्डे से अपनी सेना वापस बुलाई। यूनिसेफ ने कहा हैती में बढ़ती गरीबी और हिंसा के बीच पिछले साल सशस्त्र समूहों में बच्चों की भर्ती 3 गुना अधिक हुई। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है और ICC क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।